ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاه والسلام। अभी आपने औलाद की तरबियत के सिलसिले में बहुत अहम और कीमती बातें मुफ्ती महमूद साहब की जबानी सुनी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और शरीयत मुतहरा ने औलाद की तरबियत के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं, अगर उन हिदायतों का हम एहतमाम करें तो अल्लाह तबरक ताला औलाद को मुती व फरमाबरदार बनाते हैं। हम यूँ समझते हैं कि बच्चा पैदा हो, पैदा होने के बाद 5-6 साल का हो जाए, उसके बाद हम उसकी तरबियत की तरफ ध्यान देंगे। हालांकि इस्लाम ने तरबियत के लिए बहुत पहले से हमारे लिए एक जमीन हमवार की। देखिए, आप कोई शानदार किस्म का उम्दा बाग तैयार करना चाहें, आम का या और किसी फल का, तो क्या करेंगे? उसके लिए आप पहले तो उम्दा किस्म की जमीन हासिल करेंगे जहां बेहतर से बेहतर जो है दरख्त उग सकते हों। वो जमीन अपनी सलाहियत के एतबार से आला दर्जे की हो, ऐसी जमीन आप खरीदेंगे। उसके लिए बीज आला का आला किस्म का लाएंगे या जो कलमें लाएंगे उसके अंदर बोने के लिए, वो भी आला किस्म की। उसमें खाद भी बेहतरीन किस्म के आप इस्तेमाल करेंगे, पानी भी बेहतरीन किस्म का, और फिर उसकी हिफाजत का भी पूरे पूरा इंतजाम, कोई जानवर आकर के उसको पहले ही नुकसान न पहुंचा दे। तो गोया वो बाग तो जब तैयार होगा और उसमें फल आएंगे तब फल आएंगे, लेकिन उसके लिए आप तैयारी बहुत पहले से करते हैं। इस्लाम ने भी हमें नेक औलाद के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं, हम क्या समझते हैं कि वो औलाद हमारा ध्यान नहीं उसकी तरफ कि ये औलाद के सिलसिले में है, लेकिन हकीकत यही है कि आइंदा नस्लों को नेक बनाने के लिए ये तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया। पहली बात तो ये है कि औलाद पैदा होती है माँ से, तो उसकी और माँ और बाप दोनों का जो नुतफा मिलता है उससे वजूद में आती है, तो माँ की हैसियत गोया औलाद के लिए जमीन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायतें दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई आप निकाह करना चाहते हैं तो निकाह के लिए कैसी औरत पसंद करेंगे? तो यहाँ मसला औरत की पसंदीदगी का आया। नबी करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تن کہل مراتو لے اربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے چار میں سے کسی نہ کسی ایک بنیاد پر کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ مالدار عورت سے نکاح کروں گا تو مجھے اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. بہت سے لوگ اس کا حسن اور جمال دیکھ کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. اور عام طور پر نوجوانوں کا میلان بھی چونکہ خواہش نفس کا تقاضا ہوتا ہے اور حسین عورت اچھی لگتی ہے تو گویا اسی کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے تو اس کی حسن اور جمال کی وجہ سے. اور بہت سے لوگ اونچا خاندان دیکھ کر کے لحاظ بہا اونچے خاندان کے اندر نکاح کروں گا تو اس کی وجہ سے میرا بھی مقام اور بلند ہو جائے گا, میری ویلیو بھی بڑھ جائے گی. اور بہت سے لوگ دینداری کو دیکھ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ تم دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کرو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگ عورت کی پسندیدگی کے سلسلے میں جن چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اس میں جو بنیادی چیز تھی دینداری, اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی. ویسے شریعت یہ نہ منع نہیں کرتی کہ آپ دوسری چیزوں کا لحاظ, لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ پہلا درجہ دیں کس کو؟ دینداری کو. دینداری کے ساتھ اگر اس میں حسن و جمال بھی ہے, دینداری کے ساتھ وہ اونچے گھرانے کی بھی ہے, اور دینداری کے ساتھ وہ مالدار بھی ہے, تو نورون علی نور دونوں ہاتھ میں لڈو. لیکن اگر مقابلہ ہو جائے, ایک طرف ایک عورت ہے دیکھنے میں بڑی حسین و جمیل ہے لیکن اس کے اخلاق خراب ہیں, بددین ہے, غلط راستے پر چڑھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ مقابلے میں دوسری عورت اتنی حسین و جمیل نہیں لیکن وہ دیندار ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور مطیع ہے, تو ہمیں اب کہتے ہیں جب مقابلہ آ پڑا تو آپ اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیجئے. یہ کیوں کہا؟ چونکہ یہی عورت آئندہ جا کر کے ہماری اولاد کی پیدائش کے لیے زمین بننے والی. دیکھو اچھی زمین کا انتخاب کرایا شریعت نے, ہمارا دھان یہاں نہیں جاتا. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے, یہ نطفہ جو ہے مادہ منویہ وہ تیار ہوتا ہے آدمی کے خون سے, اور خون بنتا ہے غذا سے. ہمیں شریعت نے یہ بھی تاکید کی کہ آپ کی غذا حلال ہونی چاہیے, کمائی حلال ہو, اس حلال کمائی سے جو آپ غذا حاصل کریں گے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی, جو خون بنے گا وہ صالح خون بنے گا, اس خون سے جو مادہ منویہ تیار ہوگا وہ صالح ہوگا, اور وہ آپ کی اولاد کا ذریعہ بنے گا تو وہ اولاد بھی کیا ہوگی؟ صالح ہوگی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة لحم نبت من الصحت کل لحم نبت من الصحت کانت النار اولا بھی, جسم کا جو حصہ جو گوشت حرام غذا سے تیار ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ جو حصہ حرام غذا سے تیار ہوا جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ہمارے اسلاف اور اکابر حرام لقمے سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. آپ نے حکایات صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا, بخاری شریف میں بھی موجود ہے. وہ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کا غلام خراج کے طور پر کچھ کھانا لے کر کے آیا. وہ خراج کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کو اپنا کام کر کے کرنے کی اجازت, تم اپنا کماؤ اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دینا. تو اس کی عادت تھی उसके में से देने के लिए लाता था, एक रोज खाने का तैयार खाना लेकर के आया। उसने आकर के रखा, हजरत ने एक लुकमा मुँह में रख दिया। गुलाम ने कहा, हजरत आप तो रोजाना पूछते हैं कि ये खाना कहाँ से लाया, आज नहीं पूछा। हजरत ने कहा, मैं 2-3 वक्त का फाका था, इतने उजलत में मैंने रुकमा ले लिया, बता कहाँ से लाया। कहा, मैंने इस्लाम लाने से पहले कहानत की थी, वो काहिन लोग हुआ करते थे, मुस्तकबिल की खबरें बता लोग उनके पास जाते थे और उसके मुआवजे में कुछ उसकी खिदमत में पेश भी करते थे। तो मैंने कुछ लोगों की कहानत की थी उस वक्त, हालांकि मैं कहानत करना जानता नहीं था, मैंने धोखा ही दिया था। एक तो कहानत खुद जो है इस्लामी तालीम के एतबार से गलत है, और उसमें धोखा करेला और नीमचड़ा जैसा मसला हो गया। तो बहरहाल कहा, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, आइंदा जब कुछ होगा तो देंगे। आज मैं वहां से गुजर रहा था, वो बाद में इस्लाम लाया, आज मुसलमान होने के बाद वहां से गुजर रहा था, वहां कुछ खाना तैयार हुआ था, उन्होंने वही खाना इसको उसके मुआवजे में दिया। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा, तू तो मुझे हलाक ही कर देता। फौरन जो है हलक में उंगली डाली उस लुकमे को निकालने के लिए, लेकिन एक तो लुकमा और वो भी 2-3 वक्त के फाके के बाद गया था, कैसे निकलता नहीं निकला। किसी ने कहा कि पानी पियो, एक बड़े बर्तन में पानी मंगवाया, पिया और फिर हलक में उंगली डालकर तय की, बड़ी मुश्किल से वो लुकमा लुकमा निकला। किसी ने कहा, हजरत आपने एक ही तो लुकमा था उसके लिए इतनी सारी तकलीफ उठाई। जवाब में फरमाया, ये लुकमा अगर मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं उसको निकालते रहता, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने सुना है कि जिस्म का जो हिस्सा हराम गिजा से तैयार होता है, जहन्नम की आग उसकी ज्यादा हकदार है। बच्चे के पैदाइश के बाद भी दूध पीने के ज़माने में भी हलाल और पाकीज़ा गिजा का अहतमाम होना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात हैं। वैसे देखो, वहाँ हमें जो तालीमात दी गई हैं उनमें शरीयत ने नेक औलाद के लिए आदमी का जहन कैसा बनाया कि आदमी जब अपनी बीवी से सोहबत करे तो जो दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जन्निबना मिन शैतान व जन्निबी शैतान मिम्मा रज़क़तना, अल्लाह तो हमको शैतान से बचाइए और हमें जो तू औलाद दे इस सोहबत के नतीजे में उसको भी शैतान से बचाइयो। देखो, गोया ऐन उस वक्त तो जब आदमी अपनी शहवत पूरी कर रहा है, लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे किया कि इस वक्त भी एक मोमिन की तमन्ना यही होनी चाहिए कि इसके नतीजे में जो औलाद हो उसके ऊपर शैतान का कोई असर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ऐन उस वक्त जबकि आदमी का मर्द का मादा मनिया निकल रहा होता है, उस वक्त भी दुआ है, वो जबान से नहीं दिल में पढ़ने की है, अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतान फीमा रज़क़तना नसीबा, कि अल्लाह इस सोहबत के नतीजे में जो औलाद तू हमें अता फरमाएगा उसमें शैतान का हिस्सा न रखियो। मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ कि शरीयत ने नेक औलाद के मामले में हमको कितना हसास बनाया है कि उस वक्त भी हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, नेक औलाद के हुसूल की तरफ होना चाहिए। ये दुआएं इसीलिए सिखलाई गई कि आदमी अपने आप को शैतानी असरात से महफूज रखे। हलाल गिजा या हलाल पाकीज़ा गिजा उसमें बड़ी अहमियत रखती है। एक बुजुर्ग थे, उनका एक बच्चा शरारती था। किसी ने कहा, आप तो नेक हैं, आपका ये बच्चा ऐसा क्यों? कहा, एक मरतबा किसी जगह पर मुश्तबह खुराक खा ली थी जिसमें हराम की मिलावट होती है, उसके बाद जो है तबीयत में तकाजा हुआ सोहबत का और उसी से ये बच्चा पैदा हुआ है, उसका असर इसमें आया। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देख अगर हम अपने औलाद को नेक बनाना चाहते हैं तो मुझे और तुझे दोनों को अपने आप को हर किस्म की जो है इस तरह की नापाक गिजा से बचाने की ज़रूरत है, वादा करो। चुनांचे आपस में मुआहदा किया, और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। वो बुजुर्ग तलवार लेकर अपनी बीवी के पास गए कि ये बच्चा चोरी के जुर्म में पकड़ा क्यों गया, सच बता, तूने हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था उसमें कोई जो है खयानत तो नहीं की थी? मैंने तो नहीं की। उस औरत ने इकरार किया कि दूध पीने के ज़माने में एक मरतबा हमारे पड़ोसी के घर के पीछे बेरी का दरख्त है, उसकी एक टहनी हमारे घर की तरफ आती थी, एक बेर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लेके मैंने खा लिया था, उसका असर था जो इस बच्चे के अंदर आया। तो हकीकत तो यह है कि गिजा जितनी पाकिजा होगी उतनी औलाद सालेह बनेगी कुदरती तौर पर। बहरहाल औलाद की तरबियत के सिलसिले में ये तो दो मिसालें मैंने दी हैं, वरना आप शरीयत की तालीमात को देखें तो कदम कदम पर हमें इसकी तरफ मुतवज्जे किया गया है। अगर हम उसका अहतमाम करें तो उसकी बरकत से अल्लाह तबरक ताला हमारी औलाद को नेक और सालेह बनाएंगे। हमें अपनी औलाद की ईमान की भी फिक्र करनी चाहिए। अभी जो मैंने आयतें पढ़ी थी उसमें एक आयत पढ़ी थी हजरत याकूब अला नबीना वाली सलात वसलाम का, एक वाक़ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत। बारी ताला एक अजीब व गरीब अंदाज से इस वाक़े को पेश फरमा रहे हैं कि क्या तुम मौजूद थे जिस वक्त हजरत याकूब की मौत का वक्त आया। जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से सैकड़ों साल पहले का यह किस्सा है। गोया बारी ताला बतलाना चाहते हैं कि भाई हमारे इल्म में है यह वाकया, हम आपको बतला रहे हैं कि जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को, 12 औलाद थी, उनमें एक अल्लाह के नबी थे हजरत यूसुफ अला नबीना वाली सलाम, उनको बुला करके क्या कहा, इद काल अले बनी है मा ताबुदू ना मिम्बादी। तरह सोचने की बात है कि देखो ये कौन कह रहा है, हजरत याकूब जो अल्लाह के नबी हैं। और कमाल की बात तो यह है कि खुद इनके अब्बा हजरत याकूब के वालिद हजरत इसहाक वो भी अल्लाह के नबी, इनके चचा हजरत इस्माइल वो भी अल्लाह के नबी, इनके दादा हजरत इब्राहिम वो अल्लाह के खलील, वो पूरा घराना नबूवत का घराना। आप समझ सकते हैं कि जिस औलाद की तरबियत नबूवत के घराने में हुई हो, जो वहां पल करके बड़े हुए हों, उनके ईमान के मुताल्लिक कुछ शक को शुबा हो सकता है। फिर भी मौत के वक्त हजरत याकूब बुला करके उनसे कहते हैं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने जवाब में कहा, कालू नाबुदु इलाहक, ये अब्बा जान आपका जो माबूद है, आप जिसकी जिंदगी भर इबादत करते रहे, वह इलाहा अबाए का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, और आपके बाप दादा हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक का जो माबूद है जिनकी वो इबादत करते रहे, इलाहु वाहिदा वही एक अल्लाह, उसकी हम इबादत करेंगे, वनानु लहु मुस्लिमून, और हम उसके अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं। गोया एक नबी को दुनिया से जाते वक्त तो अपनी औलाद के मुतालिक फिक्र है तो काय का ईमान का। हमें ये वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से सैकड़ों साल पहले पेश आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में इसको इसलिए नाजिल किया कि इसके जरिए से हमें सबक दिया जा रहा है कि एक मोमिन जब दुनिया से जा रहा हो तो उसके उसको अपनी औलाद के मुतालिक ये फिक्र ना हो कि मेरी भी औलाद क्या खाएगी, मैं दुकान छोड़ करके जाऊं, मैं बैंक बैलेंस छोड़ करके जाऊं, मैं बंगला छोड़ करके जाऊं, मैं कारें छोड़ करके आऊं, नहीं। उसको अगर फिक्र होना चाहिए अपनी औलाद के मुतालिक तो ये होना चाहिए कि मेरे बाद वो ईमान पर कायम रहेगी या नहीं। हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं यह ऐसा दौर है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, युस्बिहुल मरो मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, के आदमी सुबह को मोमिन है शाम को काफिर, शाम को मोमिन है सुबह को काफिर। हालात इतने ज्यादा संगीन हो चुके हैं, ऐसे हालात में हमें अपने औलाद के ईमान की फिक्र करनी चाहिए, यही सबक दिया गया है इस वाक़े में। एहतमाम करेंगे अपने औलाद की तरबियत के सिलसिले में, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, वरना कौमें की कौमें गुम हो जाती हैं। आप जिन मुल्कों में रहते हैं इससे पहले ऐसे अपने ईमान के अंदर मजबूत लोग आए, आज उनकी नस्लों में ईमान नहीं है। तो हम जब तक इसकी फिक्र नहीं करेंगे वहाँ तक ये चीज़ हासिल होने वाली नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमको ईमान के ऊपर कायम रखते हुए अपनी औलाद और अपने आने वाली नस्लों की ईमान की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हर किस्म के शुरूर फितन आफात बलियात मकारे से पूरे पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सैयदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिह।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।